نیچے رکھو دیکھ کیا آپ تو مندر میں رہتے ہیں
تھوڑا نیچا رکھنا بسان جی رادھا مادھو کنج بہاری جی رادھا مادھو کنج بہاری جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری جن ولبھ گریور دھاری جی یشوانندن برج جن رنجن یشود یشوانندن برج جن رنجن یشود یشوانندن برج جن رنجن یشود جن یشوانندن برج جن رنجن یشود جن رنجن یمنا تیرا ونچاری یمنا تیرا ونچاری جی رادھا مادھو کنج بہاری مادھو جی رادھا مادھو کنج بہاری جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری جی گریور دھاری جی گوپی جن ولبھ گریور دھاری جی یشوانندن برج جن رنجن یشوانندن جن یشوانندن برج جن رنجن یشوان جن یمنا تیرا ونچاری جی जय राधा माधव कुंज बिहारी। क्या हो जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय रूपानी तय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय निदाई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ठ किम्।
श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध दशम अध्याय श्लोक संख्या 8। श्री नारद उवाच नह्यन्यो जुषतो जोष्या बुद्धिभ्रंशोरजो गुणः श्रीमदादा विजात्यादि यत्र त्रिदितमासवः। श्री नारद उवाच नह्यन्यो जुषतो जोष्या बुद्धिभ्रंशोरजो गुणः श्रीमदादा विजात्यादि यत्र स्त्रीदूतमासव। श्री नारद उवाच न
यन्यो जुषतो जोष्या बुद्धिभ्रंशो रजो गुण श्रीमदादा विजात्यादि यत्र त्रिदुतमासव
यत्र श्रीजुत्तमासव श्रीनारद उवाच नान्यो जुषतो जोषा नारद उवाच नारद मुनि ने कहा नहीं है ही निसंदेह अन्य दूसरा भोग जुषत भोगने वाले का जोष्यान भौतिक जगत की आकर्षक वस्तुएं खाने सोने मैथुन करने आदि की विभिन्न किस्म बुद्धिभ्रंश बुद्धि को आकर्षित करने वाले ऐसे भोग रजोगुण द्वारा नियंत्रित श्रीमदात संपत्ति की अपेक्षा आभिजात्य आदि चार भौतिक नियमों में से यत्र जहां स्त्री स्त्रिया जुतम जुआ खेलना आसव शराब। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। नारद मुनि ने कहा कि भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता से भी अधिक बुद्धि को मोहित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो में से लोग रजो तथा तमो गुणों द्वारा और विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमो गुण का दमन करने और सतो गुण को वर्धित करने के लिए मिला है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेश नाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो जाता है तो वह अपना धन केवल तीन चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जाता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं तीन वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान है। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नल कुबेर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपद कमलं श्री गुरो नवैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो 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 महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद जी जिन्होंने इस संसार में अद्वितीय कार्य किया, सिर्फ गौड़ी वैष्णव ही नहीं लेकिन सतुह संप्रदाय के सभी वैष्णव के द्वारा उच्च पद प्राप्ति जिन्होंने जिन संतों के हृदय में की है, उन सभी संतों का यह कहना है कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किए वो पूरे विश्व के लिए सराहनीय है। रामानुज संप्रदाय के एक महान सन्यासी जिनको 10,000 से ज्यादा सन्यासी शिष्य थे, वो खुद सन्यासी थे और उनको 10,000 से ज्यादा सन्यासी शिष्य थे, वह एक बार अपनी सभा में कह रहे थे, राधानाथ स्वामी ये बात कह रहे हैं कि हम सब अगर मिल जाए, एक साथ में जुट जाए और हम सबका कार्य देखे और सामने एक तरफ श्री भक्तिवेदान गौड़ी वैष्णव श्री भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जी एक तरह है और एक तरह हम सब है, फिर भी हम सब मिलकर भी प्रभुपाद जी के एक अंश के समान भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो कार्य किए हैं पूरे विश्व में, हम सब मिलकर भी प्रभुपाद जी के कार्य के एक अंश के समान नहीं है। उनका यह कहना था, जो सन्यासी के भी गुरु है उनका यह कहना था, तो हमारे लिए तो ये बात हम अपने मन से सोच भी नहीं सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। हम सिर्फ आरोहण कर सकते हैं उस पर, प्रभुपाद जी ने किया है कि ठीक है मंगला आरती में आ जाए, भागवत पढ़िए, क्यों किया है, उस पर उसका क्या विचार होगा, कैसे जीवों को शुद्ध बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या, वो सब प्रभुपाद जी ने एक एक कार्य के विषय, साइंस भी है, आध्यात्मिक तो है ही लेकिन साइंस भी है। इसीलिए प्रभुपाद जी का सराहनीय है कि प्रभुपाद जी ने जितना नाम प्रचार विश्व में किया उतना नाम प्रचार कोई नहीं कर पाया। यद्यपि कलयुग का धर्म है क्या है, नाम संकीर्तन है ना, लेकिन इस नाम संकीर्तन को कोई स्थापित नहीं कर पाया, किसी भी वैष्णव के द्वारा स्थापित नहीं हुआ, वह एक शील भक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ही स्थापित हुआ पूरे विश्व में। इसलिए प्रभुपाद जी का कार्य सराहनीय है सभी संप्रदायों के लिए। यही प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से हम सब भक्ति में थोड़ा बहुत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लगे हुए हैं। तो मैं कहने यह जा रहा हूं तक हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी हमारे पर दादा है ना, यही कहा जाएगा ना कि हमारे पर दादा है, कि इन्हीं आश्रय में हम सबको बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त होना, आप सभी भक्त प्राय भागवत सुनते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए आप सबके सामने भागवत महात्म्य कहना जरूरी उत्साह देने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अपना उत्साह बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि भागवत का महात्म्य इतना ही है कि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी सुन ले तो व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी हो जाता है। ग्रंथ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को घर में रखने से व्यक्ति उसके पितरों के साथ मुक्ति के अधिकारी हो, भागवत का मास में बहुत बहुत लिखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सभी को मुक्ति नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, इसलिए बार बार सुनते रहते हैं, वरना एक बार सुनकर आप घर में बैठते रहे, मुक्ति मिल जाए जो बात ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए भागवत सुनना मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, रसास्वादन करना कृष्ण प्रेम का। इसलिए आप सब परमहंस के गुण को धारण करके नित्य श्रीमद भागवत सुनते हैं, वो हम सबका परम सौभाग्य है। तो दशम स्कंद में भगवान बंधे हुए हैं, है ना, माता ने बांध दिया है। लेकिन बंधे हुए भगवान बंधे हुए होते हुए भी दूसरों को मुक्त कर सकते हैं, है ना। इस संसार में देखा जाता है कि जो व्यक्ति बंधा है वो दूसरों को, मुझे हथकड़ी आप लगा दीजिए तो मैं दूसरे की हथकड़ी नहीं खोल सकता, है ना, दूसरे को नहीं। लेकिन इस संसार में उल्टा रिजल्ट है, भगवान खुद बंधे हुए है लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर रहे हैं। इस प्रसंग में बहुत बहुत आचार्यों ने लिखा है, मैं सोच रहा हूं कि गिरधारी का दर्शन हो जाए तो बाद में एक लिंक, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। तो कथा आप सब जानते हो, और 6-7 श्लोक सल अबे भक्तों ने ले लिया है हमारे मित्र परम श्री शुद्ध चौ प्रभु के मुखारविंद से अपने रसा स्वादन किया, और गौर दयालु प्रभु जी ने कहा था 2 दिन पहले। तो मुख्य रूप से कथा सब जानते हैं, लेकिन इसकी लिंक जोड़ने के लिए सिर्फ 2-5 मिनट में कह देता हूं कि नारद जी ने सोचा आए, और उन्होंने क्या देखा, नल कुबेर और मणिग्री वो दोनों श्री के मद में नशा के शराब मदिरा के नशे में बेहोश पड़े हुए हैं, है ना। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि इन पर मुझे कृपा करना है, लेकिन मेरी कृपा फलवती होगी नहीं। तो मन ही मन सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि बेहोश हालत में यहां पर होश में होते हुए भी व्यक्ति नहीं सुनता है, क्योंकि मन से कहीं दूसरी जगह पे रहता है, कोई डायमंड मार्केट में रहता है, कोई कोई सेवा में रहता है, कोई डोनेशन मांगने किसके पास जाएंगे, भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे, सब अलग अलग तरह से अपने अपने मन से अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग जगह पर रहते हैं, है ना। तो होश में होते हुए भी कभी कभी हम लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि मन दूसरी जगह रहता है। तो ये तो बिल्कुल बेहोश था, शरीर से भी बेहोश था, और तो मन की स्थिति की तो बात ही नहीं, है ना। तो नारद जी ने सोचा कि कृपा तो करना है, क्योंकि संत का स्वभाव है, लेकिन कैसे कृपा की जाए, इस हालत में तो असंभव सा लग रहा है। तो यह सोचकर नारद जी 7वां श्लोक बोले कि तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदांधो सुरात्मजो तयोर अनुग्रहार्था ये शापम दास्यम इदम जगो। सॉरी, सुखदेव गोस्वामी कहा के तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो, उन दोनों को देखा, कैसे देखा, मदिरा में मत थे, श्रीमदांधो सुरात्मजो वो सुर के आत्मज, कुबेर के आत्मज दोनों पुत्र श्रीमद में अंध हो गए थे। तो तयोर अनुग्रहार था शापम दास्यम इदम जगो, तयोर अनुग्रहाय थाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप दिया, जगो मतलब उच्चारित किया, शब्द बोले तो तयोर अनुग्रहार थाय, सिद्धर स्वामी उन पर लिख रहे कि अनुग्रह था अनुग्रहस्य अर्थस्य, दो शब्द अलग अलग कर रहे थे। अनुग्रह पूरे सेंटेंस का मतलब है अनुग्रहार्थाय, कृपा करने के लिए, लेकिन कृपा क्या है, तो दोनों शब्दों को अलग अलग कर रहे हैं। अनुग्रहस्य मतलब मद निवारण, अनुग्रह क्या करना है, सबसे पहले इसका मद निवारण करना है, और अर्थ क्या है, तो श्री कृष्ण दर्शनम इति अर्थस्य, जब मद का नाश होगा तब उसको श्री कृष्ण दर्शन होगा, श्री कृष्ण दर्शन करवाना है, इस बात को मन में विचार कर कर उन्होंने साप दिया। चक्रवर्ती बात कहते हैं तो मन में ही कह देते, ऊंचे स्वर से बोलने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी सुनने लायक नहीं थे, है ना। उन दोनों की हालत तो ऐसी है कि कुछ भी कोई भी कुछ भी कहे तो वो दोनों तो सुन नहीं पाएगा, तो क्यों जगो, मतलब ऊंचे स्वर से क्यों बोले, मन में ही बोल देते या तो बोलते ही नहीं। तो इन पर चक्रवर्ती बात कहते हैं कि दूसरे लोग श्रीमत से अंध न होए, दूसरे लोग इस मद से बच जाए, इसीलिए श्री नारद जी ऊंचे स्वर से बोले। सिर्फ नल कुबेर और मणिग्रीव को लक्ष्य करके नहीं बोले, इस उपदेश को धारण करके दूसरे दूसरे जीव भी बच जाए, इसीलिए नारद जी ने उच्च स्वर से कहा श्री नारद उवाच। अब इस श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, नारद जी के वचन की ऐसी कुशलता है, उसके वचन ऐसे है, उसके उपदेश ऐसे है, व्यक्ति उसके इसके हृदय में धारण कर लेता है, वो व्यक्ति पार हो जाता है। ये भक्ति महारानी ने पद्म पुराण में कहते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम साकलयम ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवयम। क्या कहते हैं, जगति जयति माया यस्य काया धवस्ते, यस्य मतलब जिसके, एकम वचनम एक वचन को आकलय स्वीकार करके धारण करके, कौन कयाधु के पुत्र श्री प्रहलाद जी, जगति जयति माया, इस जगत में माया को जीत गए हैं, माया को जीतना। लेकिन नारद जी के वचन सुनकर, नारद जी की बात को हृदय में धारण करके कयाधु के पुत्र क्या किए, माया को जीत गए। और दूसरी बात कहते हैं क्या, ध्रुव पद्म पे या तो यत कृपा तो ध्रुव, मान लीजिए ध्रुव को दिखाकर कह रहे हैं अयम ध्रुवोपी, अयम शब्द लिखा हुआ है इस श्लोक में, अयम ध्रुवोपी यह ध्रुव भी, ध्रुव पदम, ध्रुव पद को ध्रुव भी ध्रुव पद को प्राप्त कर दिया, वह आप ही की कृपा है। सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम समग्र कौशल के भंडार ब्रह्म पुत्रम नतास्मि, ब्रह्मा जी के पुत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। तो श्री नारद उवास, श्री नारद जी के वाक्य में, श्री नारद जी के स्वभाव में, श्री नारद जी का अमोघ बल है, नारद जी के वाक्य में, नारद जी के आचरण में, नारद जी की अनुभव में ऐसा अमोघ बल है, उसकी वाक्य रचना ऐसी है कि इस वाक्य रचना को कोई भी व्यक्ति हृदय में धारण करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति इस माया को पार हो जाता है, माया को जयति जगति माया, माया को जीत लेता है। जितने जितने व्यक्ति को नारद जी मिले हैं, भगवान ने प्रयास किया है उन सबको मिलने के लिए, है ना। वैसे नारद जी बोल रहे हैं, श्री नारद उवास क्या कह रहे हैं कि ना यज्ञ जुषतो जोश्यान बुद्धि वंशोर जगुन, जुषतो जोश्यान प्रिय विषयान जुषत सेव मानस्य, जोश्यान का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया है कि प्रिय विषयान, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जुषत सेव मानस्य सेवन करते हुए पुरुष का श्रीमदात, श्रीमदात श्लोक का अन्वय बिठाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आप सब ध्यान देंगे तो ही समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ में आएगा। जुषतो जोश्यान श्रीमदात, श्रीमदात मतलब धन के गर्व से बुद्धि नाश होती है, श्रीमदात, श्रीमदात और अभिजात ये दोनों शब्द साथ साथ में होते हुए भी अलग किया है, श्रीमदात को पंचमी विभक्ति में रखा है और अभिजात को प्रथमा में रखा है, लेकिन दोनों मद है, अभिजात मतलब उच्च कुल में जन्म, आदि मतलब विद्या आदि से लेना चाहिए, ऐसे चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। तो इस श्लोक की शुरुआत जोश्यान मतलब प्रिय विषयान, जुषत मतलब सेव मानस्य, प्रिय विषयों को सेवन करते हुए पुरुष, श्रीमद मतलब श्री के मद से जितना बुद्धि नाश होता है, श्री मतलब धन, उन दोनों पर विचार कर, उन दोनों की स्थिति पर विचार कर नारद जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम सबके लिए। भाई श्री कह रहे हैं कि इस श्लोक पर ये तीन चार श्लोक, ये श्लोक और इसके बाद आने वाले तीन चार श्लोक वो धन को कटाक्ष कर रहे हैं। इस संसार में इस धन के विरुद्ध प्रवचन करना मतलब कड़वा रस बने जैसा है, बहुत कड़ी बात कह रहे हैं। धन में तीन दोष है, धन में तीन मुख्य रूप से तीन दोष है। एक धन स्वयं दोष है, श्रीमदात शब्दों पर मैं कह रहा हूं कि श्री के मद से व्यक्ति की जितनी बुद्धि भ्रंश होती है, तो श्रीमदात से क्यों बुद्धि भ्रंश होती है? तो श्रीमद में, श्री मतलब धन में तीन दोष है। क्या तीन दोष है भाई? एक धन स्वयं दोष है, धन में 15 अनर्थ गिनाए गए हैं श्रीमद भागवतम में। स्तेयम हिंसा नृतम दंभ, स्तेयम मतलब चोरी, हिंसा, नृतम मतलब झूठ, दंभ करना, स्तेयम हिंसा नृतम दंभ काम क्रोध स्मय मद, स्मय का अर्थ होता है गर्व और मद का अर्थ होता है अहंकार। भेदो वैरम अविश्वास, भेद मतलब भेद बुद्धि हो जाती है, धन बढ़ जाता है तो भेद बुद्धि हो जाती है, वैरम अविश्वास वैर हो जाता है और अविश्वास प्रकट हो जाता है। संस्पर्धा व्यसनानी से, संस्पर्धा स्पर्धा हो जाती है, व्यसनानी से लंपटता शराब और जुआ, ये तीनों साथ में उसको व्यसन कहे गए कि जो एक बार आदत पड़ गई इसके बाद छोड़ना मुश्किल है। तो धन में ये 15 अनर्थ गिनाए गए हैं श्रीमद भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में 18 नंबर के श्लोक। इसके बाद वाले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैसे तो भगवान के श्री मुख से उद्धव जी को कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, एते पंच दशानर्था, अर्थ कहे जाने वाले, धन कहे जाने वाले ये 15 अनर्थ है, उस 15 अनर्थ को जो अपना श्रेय चाहता है, श्रेय अर्थी दूरेत त्यजेत, दूर से ही उनको त्याग दे। आप तो कहेंगे आप धन त्यागने की बात कर रहे हैं, यहां तो धन लाओ धन लाओ धन लाओ हो रहा है। सप्तम स्कंद में लिखा है कि व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा जो धन इकट्ठा करता है वो चोर है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा है तो मंदिर में दे दीजिए, मंदिर बन जाएगा। यहाँ पर वैसे भी श्लोक लिखा है कि पितृ के साथ कभी मुक्त हो जाएंगे। तो भागवत की दृष्टि में चोर होना इससे अच्छा है कि मुक्त हो जाना, है ना, धन देकर। जिसके पास धन है उसमें ये 15 अनर्थ अपने आप न चाहते हुए भी आ जाता है। जैसे हजार की नोट में, हम हजार की नोट जेब में रखते हैं तो उसमें एक का, दस का, बीस का, पचास का, सौ का और 500 का नोट अपने आप आ जाता है ना, उसमें ऑलरेडी है ना। तो धन आएगा तो इसमें ऑलरेडी ये 15 वस्तु साथ में आती है। कोई संत कवि ने कहा है, समय बहुत कम है लेकिन फिर भी कह देता, वो कनक कनक तो कनक कहते हैं धतुरा को और कनक कहते हैं सोने को। तो धतुरा के रस को व्यक्ति पीता है उसके बाद में नशा, और वो सिर्फ पास आ जाने से नशा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आ जाए अपने पास तो आदमी नशीला हो जाता, नशा बढ़ता है अपने आप। धन के विषय में बहुत बहुत कहा गया, धन ही अनर्थ है इस संसार में। भागवत में धन की भगवान कहते मैं जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊं ना उसके सबसे पहले धन हर लेता हूं। भगवान ने ऐसा कहा एकादश स्कंद में। सभी अनर्थों का यद्यपि चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ अर्थ की एक उपादेयता गिनाई गई है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन फिर भी वही अर्थ अर्थ है, वही धन धन है जो नारायण की सेवा में लगाया जाए, अन्यथा वो अनर्थ है, अर्थ नहीं है वो अनर्थ हो जाता है। और वही धन के द्वारा ही सब कुछ होता है, धन के कारण सनातन गोस्वामी का संग छूट गया ईशाद, है ना। वो लोग जा रहे थे तो पातड़ा में पर्वत पार करना था सनातन गोस्वामी को, तो वहां पर पहुंचे तो ज्योतिष, वो जो ज्योतिष था वह पहचान गया कि उसके पास कुछ धन है, सोना मोहर है। तो आगता स्वागता करना, सनातन गोस्वामी बड़े विद्वान थे, वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने पूछा कि ईशान तेरे पास कुछ धन है? हाँ, तो मेरे पास 7 सोना मोहर है। तो ठीक है लाओ, ये रख लीजिए। वो बोले कि सनातन गोस्वामी ने कहा ये रख लीजिए। तो ज्योतिष भी जान गया कि ये कोई साधारण नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आप रख लीजिए, अब नहीं चाहिए मैं आप आज रात को ही आपको मारने वाला था, लेकिन अब मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम नहीं मारोगे को कोई दूसरा मार देगा, भाई ले लेना, जब तक ये साथ में है तब तक उपाधि है, इसलिए तू ही रख ले। तो मैं तो फकीर हूं, सन्यासी हूं, कोई। तो उन्होंने कहा कि अभी एक जो तुम्हारे साथ आदमी है ना उसके पास अभी एक सोना मोहर है। सनातन गोस्वामी ने भर्त्सना की, डांटा ईशान को कि क्यों काल को साथ में लेकर घूम रहा, यद्यपि कितनी सोना मिलती 7 है ना, 7 थी, फिर भी सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, क्यों काल को लेकर साथ में घूम रहा है। और उसके बाद भी उन्होंने कहा एक है तो ठीक है, एक है तो तू एक वो एक लेकर अपने गांव चला जा, वहां से छोड़ दिया। अपने पास होता तो कोई प्रभु जी होता तो हम कहता कितना डाला, 10-15 हजार है तो ठीक है साथ में चलो, वरना कुछ नहीं तुम बाद में आना, मैं जा रहा हूं। बिना पैसे वालों की कोई वैल्यू नहीं है कलयुग में, है चाहे कोई भी हो, प्रभु जी हो कोई भी हो, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। धन का प्रभाव है ये सब। एक सोना मोर के कारण सनातन गोस्वामी जैसे, शायद आगे सनातन गोस्वामी के साथ ईशान का कहीं चैतन्य चरितामृत नाम भी आ जाता उसके सेवक के रूप में, लेकिन एक सोना मोर के चलते हुए संग छूट गया सनातन गोस्वामी जैसे संतों का। बहुत बहुत सारी कथाएं दी गई है धन के विषय में, धन से स्त्री जुआ इत्यादि चलता रहता है, जैसे धुंधकारी की कथा, गोकर्ण के भाई धुंधकारी, अजामिल वाली, भगवान को वचन दे दिया था सुग्रीव ने कि हम दोनों में संधि मित्रता हो जाए मैं आपको मदद करूंगा, आप मेरे भाई जो मेरी पत्नी को उठा गया, तो ठीक है भगवान ने कहा, भगवान ने अपना वादा पूरा किया, सुग्रीव का अभिषेक किया, राज दे दिया, राज में ऐश्वर्य सी के मद में इतना अंधा हो गया कि भूल गया भगवान का दिया हुआ वचन, स्त्री का मद था। और हम लोग सब लोग चाहते कि इतना जमीन हो जाए, इतना फ्लैट हो जाए, हम आराम से, कुछ नहीं होगा, और कामना बढ़ती रही, काम ऐसे क्रोध रजोगुण समुद्र महाशनो महापापमा विद्धि मेनम, इसलिए यहाँ रजोगुण शब्द विशेषण के रूप में दिया है जो बुद्धि को भ्रंश करता रहता है। श्रीमदा, श्रीमद से बुद्धि भ्रंश होती है, अन्य, अन्य मतलब दूसरे, दूसरे मतलब कौन से दूसरे, तो अभिजात आदि, अभिजात मतलब उच्च कुल में जन्म, आदि शब्द से विद्या, 3 प्रकार के मद होते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीपाद जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा है 3 प्रकार के मद है, विद्या मदो, एक विद्या के मद, एक श्री मदो, एक श्री का मद, श्री लक्ष्मी धन का मद, और तीसरा मत है आभिजात उच्च कुल में जन्म लेने का मत। एतेर अलिप्ता नाम, जो व्यक्ति इन तीन मत में लिप्त नहीं होता है तो ये वही सताम दमा, वह व्यक्ति ही विद्वान है और वह व्यक्ति ही संत है, दूसरा नहीं। तो अभिजात आदि रजोगुण बुद्धि वंश, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रज का अर्थ क्या है? रज का अर्थ होता है राग। रजो रागात्मिकम विद्धिम, भगवत गीता 14वां अध्याय 7वां श्लोक। क्या कहा भगवान ने? रजो रागात्मिकम विद्धि, रज को तो क्या जान? रागात्मिक। रज ही, रज का अर्थ होता है राग। तो क्या करता है भाई राग, कैसे उत्पन्न होता है? कोई प्रश्न कर दे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आगे का लाइन क्या है? रजो रागात्मिकम विद्धम तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा यही लाइन है ना शायद, तृष्णा संग, तृष्णा और संग आसक्ति से उत्पन्न होता है। तृष्णा मतलब जो वस्तु नहीं है उसकी प्राप्ति, और संग मतलब प्रीति विशेषण आसक्ति, है ना, यही तृष्णा। यह चाहिए, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, आप सब अनुभव कर लीजिए। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो वृंदावन में खंडेलवाल में या तो वृंदावन की गली में शॉपिंग करने के लिए जाए, और कोई गृहस्थ है को मार्केट में कपड़ा इत्यादि लेने के लिए, जेब में पैसा है और हम निकले तो मन और बुद्धि यही तृष्णा करती है, यह चाहिए वह चाहिए यह चाहिए वह चाहिए, जरूरत से ज्यादा। जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है वह वस्तु भी मन और बुद्धि में ऐसा प्रतीत हो ही जाता है कि हम ये वस्तु ले लें, है ना, यही बुद्धि का स्वभाव है। तृष्णा इच्छा करती रहती है, इच्छा करती रहती है, और जब उसकी प्राप्ति हो जाए तब प्रीति हो जाती है, और वही प्रीति विशेषण है आसक्ति, उसमें आसक्ति के द्वारा बंध जाते हैं। तन्नी बदनानी कौन्तेय, इसी के द्वारा हे कुंती पुत्र जीव बंधता है। तृष्णा से शुरुआत होती है और वही आगे जाकर काम एष क्रोध रजोगुण समुद्भव, भगवान ने आगे कहा है तीसरे अध्याय में काम एष क्रोध रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के द्वारा ही, क्योंकि तृष्णा से शुरुआत होती है उससे ही कामना आएगी, काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। महाशनो महापाप विद्धि महापापमा का अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा विशेष सुख चाहता रहता है, इसीलिए व्यक्ति कर्म करता रहता है, और यही भोग में किए हुए कर्म ही उसको दुख के रूप में फिर प्राप्त होता है। तो भोग करता रहता है, लेकिन जो भी करता है उसमें वो कर्म के अनुसार दुख ही उसको प्राप्त होता है। वो सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसके कर्म के कारण वो दुखी होता जा रहा है, सुखी कभी होता ही नहीं। और इसी को अलग प्रकार से भगवान ने कहता है क्रोधात होती समूह, और उसमें जब खलेल होती है, बाधा पड़ती है तो क्या होता है? क्रोधात होती समूह समूह श्रुति विभ्रम श्रुति भंश बुद्धिनाश प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो जाती है, बुद्धि भ्रंश। लेकिन इसके आगे कह रहा है कि नहीं बुद्धि भ्रंश, अभिजात आदि मतलब अभिजात मतलब उच्च कुल में जन्म लेना, विद्या इत्यादि जो मद है उस मद से वैसी बुद्धि नाश नहीं होती। कुंती महारानी ने श्रीमद भागवत में कहा है कि जन्मेश्वरीय सुत श्री भी एद माद मद पुमा नेवा हत्य विधातुम वे त्वाम किंसर गोचरम, हे अकिंसन गोचर, हे निर्धनों के धन, जो निर्धन है जो दरिद्र है भौतिक वस्तुओं में और जिनका धन आप एक ही है, हे उसके स्वामी अकिंचन गोचरम, जिसका जन्म जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री इत्यादि का जिसको अभिमान है, वह व्यक्ति कभी भी त्वाम अभिधातुम न एव हरति। आपके पूर्ण नाम श्री गोविंद श्री कृष्ण लेने में समर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इससे अभिजात आदि मतलब साफ साफ हिंदी में समझिए, अभिजात मतलब उच्च कुल में जन्म विद्या इत्यादि जो मद है उस मद से बुद्धि का नाश होता है, लेकिन कर इतना नहीं होता है जितना यत्र धूत मासव, यत्र स्त्री धूत मासव, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर रहे हैं। तो ऐसा ही क्यों कह रहे, रजोगुण से बुद्धि नाश होती है। सिपा सिद्धर स्वामी ने लिखा है कि रजह कार्य, रजोगुण का कार्य क्या है, अन्योवा रजोगुण रजह कार्य हास्य हर्षादि रूपो। रजोगुण में व्यक्ति रहता है तो क्या करता है, या तो दूसरे लोग उस पर हंसते हैं या वो खुद हंसता है। दूसरे लोग कैसे हंसते हैं उस पर, तो दूसरे लोग हंसते हैं कि किसी वस्तु में बहुत आसक्त हो जाना और बाद में प्राप्त नहीं होते है, तो लोग हंसते रहते हैं कि लंपट हो गया लट्टू हो गया, लेकिन वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हुई और खुद हंसता रहता, सिनेमा डायरा इत्यादि कर करके खुद जोर जोर से पिक्चर की बातों करके पागल जैसा हंस रहा है, यही रजोगुण का कार्य है, ऐसा सिद्धर स्वामी का कहना है। तो इसमें इतनी डेंजरता नहीं है, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यत्र यत्र मतलब श्रीमते, श्रीमत में क्या होता है, स्त्री धूत मासव, यह निरंतर चलता रहता है, स्त्री जुआ और शराब, आसव से शराब इत्यादि निरंतर चलता रहता है, इसलिए कहते हैं कि श्रीमद सती यथा पापानी जायते तथा न अन्यत्र इतिहा यत्र इति चतुर्भी। क्या होता है, पापानी श्रीमद सती, श्रीमद में धन के नशे में कोई व्यक्ति मस्त हो जाता है, सती मतलब स्थिर होता है, यथा पापानी जायते तो उससे जितना पाप होता है अथवा तो निरंतर पाप होता रहता है, तथा न अन्य इति आह, इतना पाप दूसरे मद में, दूसरे मतलब अभिजात इत्यादि मद में इतना पाप नहीं होता है जितना पाप यत्र श्री मद धन के मद में होता है, श्री के मद में होता है, उसमें भी बुद्धि भ्रंश रहती है, लेकिन श्री मद में नितराम वृद्धि भंश हो, पूर्ण रूप से व्यक्ति रम जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए श्रीमद में व्यक्ति नितराम रम जाता, इसी बात को सिद्ध करने के लिए आगे चतुर्भी चक्रवर्ती बात कहते हैं कि चार श्लोकों में आगे कहा जाएगा, मतलब नौ से यत्र यत्र से लेकर चार श्लोक में आगे कहेंगे कि कैसे श्रीमद में व्यक्ति की बुद्धि भ्रंश हो जाती है, व्यक्ति पाप में प्रयुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, गुरु जी कोई प्रश्न? हाँ प्रभु, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे तो सुन पाएंगे। रजोगुण तो कहा, रजोगुण तो रजोगुण उसका कारण रजोगुण से चाहना, तृष्णा, यह चाहिए वो चाहिए, यह बात तो कहा कि तृष्णा के कारण रजोगुण उत्पन्न होता है। तृष्णा ही नहीं रहेगी, कार्य एक ही है लेकिन तीन क्रिया होती है, एक सत्वगुण और एक रजोगुण और एक तमोगुण। हम सब यहां से जा रहे हैं तो को ज्ञान में बंधा है, ज्ञान और सुख में, तो वो सत्वगुण में बंधा है, कोई रजोगुण में बंधा है उनकी क्रियाओं के द्वारा जो मैंने 15 गिनाई, और कोई तमोगुण में बंधा है आलस इत्यादि के द्वारा। क्रिया एक होते हुए भी उसमें अलग अलग व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने गुणों की प्रधानता के अनुसार बंधता है। तो जिसके भीतर तृष्णा है वो व्यक्ति बंध जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अरे कृष्णा, ग्रंथ राज श्रीमद भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वंशा कल्प करो की बात। धन्यवाद आपको।
ऊपर से जाता है।